Subress.
On demand. Follow Subress Radio on Twitter and Facebook now.
मेरे सामने डॉक्टर राजीव वाधवा जी हैं और उनसे बस बातचीत का सिलसिला भी हम शुरू करते ही हैं। और आज के लिए, जैसा आप जानते हैं, जेट लैग एंड हे फीवर, अगर इन दो चीजों से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके पास है, प्लीज डू नॉट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। आप जल्द से जल्द अपना सवाल हमारे सामने रख दीजिए और हम वो सवाल डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। तो किस से शुरू किया जाए? जेट लैग से शुरू करते हैं
अंबर जी। पिछले तीन हफ्तों से हम लोग ट्रैवल के बारे में बात कर रहे थे।
बिल्कुल।
तो ये लास्ट वीक हम लोग पहले तो सोच रहे थे कि ट्रैवल का सेक्शन खत्म हो गया, लेकिन फिर बाद में आपने सवाल पूछा, जेट लैग को लेकर किसी का सवाल आया था
जी।
तो ये पिछले हफ्ते तो वक्त नहीं मिला, तो आज इसको जेट लैग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और फिर ये नया टॉपिक हे फीवर का जो है उसको शुरू करते हैं
जी।
तो जेट लैग क्या होता है? जेट लैग, जो लोग हम लोग लंबे सफर पर जाते हैं हवाई जहाज पर, और उनको इसका थोड़ा सा अनुभव होगा। होता क्या है कि जब आप काफी स्पीड से, यानी एयरप्लेन में अगर आप स्लो स्पीड पर कार से या इवन शिप से अगर जा रहे हैं तो आपको नहीं उतना पता लगेगा, लेकिन फास्ट स्पीड से, एरोप्लेन से जब हम जाते हैं और टाइम जोन्स जो होती हैं, वक्त की जो जोन्स होती हैं, उनको क्रॉस करते हैं तो जो टाइम चेंज होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम इंडिया जाते हैं तो गर्मियों के समय में 4.5 घंटे या सर्दियों में 5.5 घंटे का फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही जब हम अमेरिका जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फर्क पड़ता है, यूरोप जाते हैं तब भी पड़ता है, लेकिन वो 1-2 घंटे का ही होता है। तो जब हम कई सारी टाइम जोन्स क्रॉस करते हैं, यानी कि यहाँ से चले और जहाँ पहुँचे वहाँ पर 3 या 4 या 5-6 घंटे का अगर फर्क पड़ गया है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक होती है, एक अंदरूनी घड़ी होती है जिससे हमें पता रहता है कि अब ये सुबह का वक्त है, अब ये शाम का वक्त है, रात है, सोने का टाइम हो गया है वगैरह। तो वो जो है उसका एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाता है, तो हमें फिर उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ सी होती है, जिसे हम जेट लैग कहते हैं। जेट लैग जो है आम तौर पर ये ईस्ट में, जब हम पूरब की तरफ जाएं, यानी कि यहाँ से अगर हम एशिया की तरफ जाएं तो ज़्यादा होता है, और अगर वेस्ट की तरफ जाएं, पश्चिम की तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम यूके से अमेरिका की तरफ जाते हैं तो वो कम होता है, लेकिन जब वहाँ से लौट के आएंगे, अमेरिका से जब हम लौट कर फिर वापस यूके आएंगे, तो फिर वो फिर ज़्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि हम फिर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं
जी।
ये जेट लैग जो है सिर्फ ट्रैवल से ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग शिफ्ट वर्क करते हैं या लेट नाइट्स करते हैं अक्सर, या जिनका टाइम अक्सर चेंज होता रहता है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब दिन का समय, जो रोशनी का वक्त है, उसमें अगर वो सो रहे हैं और फिर रात के समय जाग रहे हैं, तो उनको भी ये सेम अपसेट हो जाती है और सेम सिम्टम्स उनको होते हैं। तो इसमें जो तकलीफ होती है वो आमतौर पर कि आपको नींद नहीं आएगी, या जब आप जागना चाहेंगे तब आपको नींद आएगी, तो नींद का आपका सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। नींद, आप जब लेटते भी हैं सोने के लिए तो आपको अच्छी नींद नहीं आती, उसमें बार बार आँख खुलती रहती है। इसके अलावा हो सकता है आपको चक्कर आ जाएं, आपको आपका डाइजेशन थोड़ा सा ख़राब हो, इंडाइजेशन हो जाए, नौजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जियत हो सकती है, भूख में फ़र्क पड़ सकता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एंग्जाइटी, घबराहट सी होने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जेट लैग की वजह से। अगर हम सिर्फ, जैसा मैंने बताया, 1 या 2 और मे बी इवन 3 टाइम जोन्स जा रहे हैं, यानी कि टाइम का जो फर्क है वो 2-3 घंटे ही है, तो ये उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब हम 3 से ज़्यादा 4-5 घंटे के टाइम लैग पर जा रहे हैं, तब हमें ये इसकी तकलीफ ज़्यादा होती है।
यानी अगर कोई यहाँ से, कह लीजिए, फ्लाइट पकड़ कर कहीं जा रहा है जो सिर्फ घंटे 2 घंटे की फ्लाइट है, तो तब इतना असर नहीं होगा,
तब उतना असर नहीं होता है भाजी। तो हम यूरोप जाते हैं, जैसे यहाँ से आप पेरिस जाएं तो शायद 1 घंटे का फर्क है, तो आपको शायद महसूस भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से इंडिया जाएं तो कुछ लोगों को होता है, और ये सबका अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सबको होना ही है। कुछ लोग को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को कम में भी हो जाता है, तो कुछ लोग हो सकता है इतने सेंसिटिव हों कि 2-3 घंटे के टाइम लैग पर जा रहे हों तब भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाए, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये इंटरनल क्लॉक जो होती है, इसे हम अंग्रेजी में सर्कैडियन रिदम कहते हैं, तो ये हमारे बॉडी में दिन और रात का थोड़ा सा सिस्टम बना के रखती है। इससे पता लगता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, कब खाने का टाइम हो गया है वगैरह, और ये रोशनी की वजह से होती है और टाइम के हिसाब से होती है। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसकी बहुत डिटेल में तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। मेलाटोनिन होता है, कॉर्टिसोल का रोल होता है उसमें, तो उसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उधर थोड़ा सा आसान होता है, ये जेट लैग के सिम्टम्स कम होते हैं, लेकिन जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, कि जो लोग फॉर एग्जांपल अगर आप एयरलाइन में काम कर रहे हैं, जो पायलट हैं या एयर होस्टेस हैं और क्रू है जो फ्लाइट का, और उनको पूरे टाइम ही उनका काम ही यही है, हर दूसरे तीसरे दिन उनको ट्रैवल करना होता है, उनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अगर आप काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो अगर आप अब तो लंबी फ़्लाइट चल गई हैं इंडिया से, जैसे अब फ़्लाइट सीधी अमेरिका या कनाडा जाती है, वो बीच में पहले इंग्लैंड में या यूरोप में कहीं रुकना पड़ता था, अब वो फ़्लाइट सीधी 12 घंटे 13 14 घंटे की फ़्लाइट सीधी जाती हैं, और आपका टाइम जो है फिर सीधे 11 12 घंटे डिफरेंट हो जाता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। तो उसमें अगर आप ठीक से सो नहीं पाए फ्लाइट पर, खासतौर पर अगर अधिकतर लोग जाहिर है कि इकोनॉमी क्लास में ही जाते हैं, तो नींद उतनी अच्छी तो नहीं हो पाती है उसमें, कुर्सी पर बैठे बैठे 12 13 घंटे की फ्लाइट में, तो उसमें वो तकलीफ और ज़्यादा होती है। पहले पुराने ज़मानों में आपको पता है कि जब फ्लाइट्स और स्लो होती थी, थोड़ी धीरे चलती थी, तो मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन सुना है कि बुज़ुर्ग लोग जब ट्रैवल करते थे तो इंडिया से इंग्लैंड आने में उनको रास्ते में 3 बार 4 बार और कई बार 5 बार भी फ्लाइट को रुकना पड़ता था। तो फ्लाइट से एक बार में सिर्फ 2-3 घंटे ही चलती थी, तो वो इंडिया से चली तो वो फिर अफगानिस्तान में, फिर ईरान में, फिर टर्की में, फिर यूरोप में कहीं और, ऐसे होते हुए हर 2-2 3-3 घंटे पर रुकते हुए, तब ये जेट लैग नहीं होता था क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से यूज्ड हो जाती है। तो अब जैसा मैंने कहा कि 12-14 घंटे की फ्लाइट्स एक साथ होने लगी हैं, तो उससे ये समस्या और थोड़ी सी बढ़ गई है। कुछ लोगों को जैसा मैंने बताया कि ये सबको सेम नहीं होता है, तो हो सकता है दो लोग फ्लाइट पर जा रहे हैं तो एक को ज़्यादा तकलीफ हो, एक को कम हो, कुछ लोग जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये हर किसी का अलग अलग होता है। तो इसके सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए कि थकान हो सकती है, स्लीपीनेस, नींद आ सकती है या नींद नहीं आ सकती है जब आपको सोने का टाइम होता है उस समय, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, जैसे लगता है कि कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है, स्पेस्ड आउट सा, एंग्जाइटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी वगैरह जो है आपकी याददाश्त पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, चिड़चिड़ापन हो जाता है जैसे मैंने बताया, आपको थोड़ा सा मूड भी लो हो सकता है, रोने का सा मन कर सकता है। तो आप जो है ख़ास तौर पर वो लोग जो काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या स्पोर्ट्स मैन है जो कुछ मैच वगैरह खेलने जा रहे हैं, तो उनको इसका खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है या कोई सेल्स की बात करनी है आपको, या कोई मैच अगर आप खेलने जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि ये जेट लैग हो सकता है, आप जो है 1-2 दिन का पहले टाइम लेकर जाएं ताकि आप वहाँ थोड़ा एडजस्ट हो जाएं, तब आप ये ज़रूरी काम करें, वरना हो सकता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं जितना आपको करना था। तो इसके लिए करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है बचाया जा सके? तो आम तौर पर इसमें आप थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को पहले से थोड़ा सा चेंज करना होता है, और ये देखना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट करना है, और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट करना है, और इसमें आप 2-3-4 दिन पहले से ये जो एक्टिविटीज़ मैं अभी बताऊंगा ये शुरू कर दें। और कुछ लोग मैंने बताया कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप फिर 2-3 दिन नहीं, आप 5-6 दिन पहले से ये एक्टिविटीज़ शुरू कर दें, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसे यूज़ टू होने में। तो अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड से मान लीजिए अमेरिका की तरफ जा रहे हैं या इंडिया से इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं, तो आप टाइम गेन करेंगे, तो आपका जो है आपका आपको जो बॉडी को ये बताना है कि टाइम अभी जितना है नहीं, उससे जल्दी है थोड़ा सा, तो उसको कन्विंस करना है बॉडी को। तो आप क्या को क्या करना है कि आपको अपने सोने का वक्त लेट कर लेना है, ज्यादा कर लेना है। तो जैसे अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो अभी यहाँ पर अगर शाम के 6 बजे हैं तो अमेरिका में इस समय वहाँ पर आप डिपेंडेंट कहाँ जा रहे हैं वहाँ पर दोपहर का 1 बजा होगा या 2 बजा होगा, 4-5 घंटे का जल्दी वक्त होगा वहाँ पर। तो आपको अपना 3-4 दिन पहले से या 5-6 दिन पहले से अपना टाइम उसी हिसाब से चेंज कर लाना है कि जैसे कि वहाँ पर होता, अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी सोएं। आप शाम के समय थोड़ा जो है उसको सॉरी आपको देर, यहाँ पर जब आप हैं तो आपको थोड़ा देर से सोना है, क्योंकि अगर आप यहाँ के समय से सो रहे हैं तो वहाँ पर तो अभी दोपहर ही हुई है या अर्ली इवनिंग है, तो आप यहाँ थोड़ा देर से सोएं कि वहाँ की शाम के सोने के टाइम पर हो। शाम के समय आप ब्राइट लाइट्स में रहें तो रोशनी देर तक ऑन रखें, तो उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी एडजस्ट होगी 2-3 दिन के लिए, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब ये सोने का टाइम इस तरह से है। आप शाम के समय एक्सरसाइज करें, सुबह के समय एक्सरसाइज ना करें, शाम के समय एक्सरसाइज करें, और उससे भी आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाती है, और आप लेटे रहें बेड पर देर तक और थोड़ा देर तक सोएं अगर आप कर सकते हैं तो जाने से 3-4 दिन पहले, तो उससे जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपकी बॉडी थोड़ी सी उस तरह से एडजस्ट हो चुकी होगी।
चलिए ठीक है, सवाल तो और भी बहुत सारे हैं जो पूछने हैं आपसे, और जेट लैग में मुझे लगता है थोड़ा और वक्त लग जाएगा अभी।
जी जी
एंड हे फीवर तो हम शुरू कर ही लेंगे।
जी करेंगे, लेकिन जी, वो जी, फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट
वीक तक जाएगा वो। जी जी, तो मैं जल्दी से क्रिकेट अपडेट कर लेती हूँ, उसके बाद लौट कर आते हैं हम। तो हमारे श्रोताओं के पास अगर कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी अपना प्रश्न भेज दीजिए 07564984152, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फोन कॉल्स की तरफ नहीं आ पाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। फोन लाइन्स के लिए 11 बजे से पहले जिनके पास वक्त था उन्होंने जो सवाल भेजा भेज दिया, जिनके सवाल रह गए वो व्हाट्सएप के जरिए पहुंच सकते हैं। थैंक यू।
ICC Cricket World Cup 2019 updates brought to you on Sabres Radio. Sabres.
चलिए अब क्रिकेट अपडेट हो जाए आपके लिए। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज और आज का जो मैच है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एट चेस्टली स्ट्रीट 39वां मैच है, और ऐसे में एक बार फिर से याद दिला दें वेस्ट इंडीज जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लेते हुए श्रीलंकन टीम को उतार दिया मैदान में बल्लेबाजी के लिए 64 विदाउट लॉस इन 11.1 ओवर्स फॉर श्रीलंका। एक बार फिर से दोहरा दूं, अब तो एक रन और जोड़ लिया इन्होंने, 65 विदाउट लॉस एंड 11 ओवर हो चुके हैं, बल्कि 2 गेंदें भी डल चुकी हैं। अगला अपडेट आपको अगले भाग में देंगे हम, और इस समय घड़ी की सुइयों के इशारे को समझते हुए हमें मुड़ना है इस तरफ। चलिए लौट कर आते हैं और सीधे बातचीत को वहीं से पिक करते हैं जहां पर छोड़ा था डॉक्टर साहब, तो वहीं से पिक किया जाए।
जी अंबर जी, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जेट लैग से बचने के लिए हम ट्रैवल से पहले, जाने से पहले ही हम क्या तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आप दूर की यात्रा कर रहे हैं तो आप 2-3 दिन पहले से ये थोड़ी सी तैयारी शुरू करें अगर संभव है। हर समय संभव नहीं भी होता है, आप अपना जाने से पहले छुट्टी पर जा किसी भी काम से आप जा रहे हैं उससे पहले आप अपना यहाँ का पूरा डेली रूटीन तो आप जाहिर है कि नहीं खराब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना आप कर पाएं वो करें। और कुछ लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो 5-6 दिन पहले से शुरू कर दें। तो इसमें अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए आप अमेरिका की तरफ यहाँ से जा रहे हैं, तो आपका जो है आप टाइम गेन करेंगे, आपकी बॉडी को लगेगा कि ये तो जो है बहुत, आप बॉडी कहेगी कि शाम हो गई है लेकिन वहाँ पर शाम नहीं हुई होगी, रात नहीं हुई होगी। तो आपको करना उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पर जाने से पहले कुछ दिन आप नाइट का रूटीन अपना बढ़ा दें, तो देर रात से आप करें, सोएं शाम को, थोड़ी सी ज़्यादा लाइट्स ऑन रखें ताकि आपकी बॉडी जो है इस तरह से एडजस्ट हो जाए देर तक करने के, और सुबह जो है आप लाइट को थोड़ा सा अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा एकदम से उठते ही तेज लाइट्स वगैरह ऑन ना कर दें कमरे में, या पर्दे अगर हैं तो ना उनको पूरी तरह खोल दें। رات کے سمے آپ تھوڑی اس میں ایکسرسائز کریں، صبح کے وقت ایکسرسائز نہ کریں اگر آپ کرتے ہیں، تھوڑا سا روٹین چینج کریں اگر کر سکتے ہیں تو، اور آپ صبح اگر جتنا سمبھو ہو دیر تک بیڈ میں رہیں یا دیر تک سوئیں، اور کمرے کو دیر تک تھوڑا سا اندھیرا رکھیں جتنا ہو سکے، اور رات کو روشنی زیادہ رکھیں، دیر سے سوئیں. تو یہ آپ اگر آپ پشچم کی طرف ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا الٹا کرنا ہے. آپ کو باڈی کو کنوینس کرنا ہے کہ ٹائم جو ہے ہو گیا ہے، جتنا ایکچوئل ٹائم ہے اس سے لیٹر ہے یہ. تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہاں سے انڈیا، خاص طور مجھے پتا ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں، مجھے اور جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ فلائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں تو کھانا وانا سرو ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد لائٹس وہ ڈم کر دیتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی باڈی اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے. اس میں آپ کو الٹا کرنا ہے. تو آپ کو رات کے سمے لائٹس جلدی سونا ہے، رات کے سمے اندھیرا کرنا ہے. تو برائٹ لائٹ میں ایکسائٹیڈ کوئی ایسا ٹی وی یا ایسی کوئی چیز چلا کر جو کافی ایکسائٹنگ ہو دیر تک، اس کو نہ کریں. جلدی سونے کی کوشش کریں اور جب اٹھیں صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، تھوڑا الارم جلدی کا لگائیں اور اٹھتے ہی برائٹ لائٹ کریں. تو اگر باہر روشنی ہے تو آپ پردے وغیرہ کھول دیں یا لائٹس آن کر لیں، اور صبح کے وقت آپ ایکسرسائز کریں تو اس سے آپ کی باڈی تھوڑا سا اس طرح سے یوز ہوگی. تو پشچم میں جاتے ہیں تو آپ شام کا روٹین بڑھائیں، اور آپ پورب کی طرف جاتے ہیں تو صبح کا روٹین بڑھائیں اور شام کے سمے الٹا کریں. تو یہ اگر آپ ایسے تین چار دن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے. اب وہاں پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں، وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو پھر اپنی ٹائم زون جو ہے اس کو یہی مان کر چلنا ہے کہ جو وہاں کی ٹائم زون ہے. تو آپ کے دماغ میں تو یہ رہتا ہے کہ ہم انڈیا آ گئے ہیں، یہاں تو رات کا 10 بج رہا ہے، لیکن انگلینڈ میں تو ابھی شام کا 5:30 ہی بجا ہے. تو آپ کی باڈی اس طرح سے ایکٹ کرتی ہے. تو آپ اس کو بھولنے کی کوشش کریں، آپ یہی مان کر چلیں کہ جو وقت وہاں پر ہے اسی کے حساب سے اپنا روٹین کریں. آپ جو ہے وہاں پر جا کر جب آپ وہاں جائیں تو مارننگ کو مارننگ کی طرح ٹریٹ کریں اور نائٹ کو نائٹ کی طرح. اس میں ٹائم زون جو چینج ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کرنے کی کوشش کریں. سو صبح کے سمے آپ جلدی اٹھیں، وہاں پر لائٹ صبح کے سمے روشنی میں رہیں، پلنٹی آف لائٹ ان دا مارننگ، ایکسرسائز کر سکیں تو صبح کریں، اور شام کے سمے جلدی سونے کی کوشش کریں، اندھیرا کرنے کی کوشش کریں تو باڈی اس سے جلدی ایڈجسٹ ہوتی ہے. دوپہر کے سمے سمبھو ہو تو آپ سونے کا نہ کوشش کریں، آپ نہ سوئیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور جب تک آپ کی باڈی اچھے سے ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی ہے، آپ الکوہول اور کیفین وغیرہ اس کا تھوڑا سا استعمال کم کریں یا نہ کریں تو بیٹر رہے گا. تو آپ کو سب سے جو بیسٹ اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے ٹائم کے حساب سے اپنا روٹین اپنائیں. صبح کے سمے ایکٹیو روٹین رکھیں، جلدی اٹھیں، صبح ایکسرسائز کریں، صبح کے سمے دیر تک نہ سوئیں، جلدی اٹھیں، اور رات کے سمے دیر رات تک جاگنے کی کوشش نہ کریں، جلدی سونے کی کوشش کریں. ہوتا اس یہ کہنا آسان ہے، ہوتا مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ خاص طور پر اگر کسی فیملی سے ملنے جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر یہی ہوتا ہے کہ صبح تو دیر تک سو رہے ہیں اور پھر رات کو دیر تک بیٹھے ہیں، باتیں گپے چل رہی ہیں. تو بٹ اگر آپ کو جیٹ لیگ کی پرابلم ہے تو ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے.
اوکے، ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 3-4 ویک کی چھٹی لے کے انڈیا جاتے ہیں
جی،
اینڈ وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلا ہفتہ تو دن بھر سوتے ہوئے ہی گزرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا
جی؟ تو جیسا میں نے بتایا جی، تو اس کی تیاری کر کے جائیں. اگر آپ ایسٹ جا رہے ہیں، پورب کی طرف جا رہے ہیں، تو صبح جلدی اٹھیں، سو جو ہے سوری جلدی سونے کی کوشش کریں، اور جب آپ اٹھیں تو صبح روشنی زیادہ ہو، صبح کے سمے ایکسرسائز کریں. یہ سب کرتے ہوئے اگر آپ وہاں جائیں گے تو تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا. جی
چلیں، آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. اور آپ نے سن لیا ہوگا ڈاکٹر صاحب کا جواب، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ अगर ज्यादा सेंसिटिव हैं तो 5-6 दिन पहले से ये शुरू कर दें।
जी जी
जी जी। और पूरा एक हफ्ता अगर सोते हुए गुजरता है, कम से कम वहाँ पर पूरा दिन मिलने जुलने वाले आते होंगे, मायूस होकर लौटते होंगे।
जी, तो आप जी, थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन आप वहाँ के हिसाब से रूटीन बनाएं। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो अगले दिन से सुबह जल्दी उठें, सुबह वॉक पर जाएं, सुबह के समय रोशनी ज्यादा करें और शाम को जल्दी सोने की कोशिश करें। वो आप कहीं भी, चाहे आप पूरब में जा रहे हैं या पश्चिम में, वहाँ के टाइम के हिसाब से अपना डे बनाने की कोशिश करें। तो जब आप, जैसे मैंने कहा, जब आप वहाँ जाते हैं तो आप अपना सुबह जल्दी उठें, अलार्म वगैरह लगा सकते हैं ताकि आप देर तक सोते ना रह जाएं, और जब उठें तो फिर अंधेरे कमरे में ना लेटे रहें, पर्दे हटा सकते हैं, लाइट्स ऑन कर सकते हैं। शाम के समय ज़्यादा एक्साइटिंग बुक्स या मूवी वगैरह, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, और हल्का खाना खाएं शाम के समय, और रिलैक्स करके, तो उससे फिर आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। और दिन के समय आप सुबह एक्सरसाइज करें और बॉडी को वार्म रखें, तो सुबह के जो टेम्परेचर से भी फ़र्क पड़ता है, तो हॉट शावर ले सकते हैं मॉर्निंग में, एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे बॉडी वार्म होती है। और अगर आपकी यूजुअली एक्सरसाइज का टाइम शाम का है तो आप कोशिश करें कि अगर उसे चेंज कर सकते हैं तो सुबह के समय उसे करें। कैफीन की जो ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी वगैरह है, तो उसको ट्राई करें कि अवॉइड करें, ज़्यादा ज़्यादा ना पिएं, अल्कोहल को भी अवॉइड करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ नई चीज़ें आ गई हैं आजकल, वो लाइट डिवाइसेस हैं, अलग तरह के, कई तरह के लैंप्स आते हैं जो मैंने मूड लैंप्स कहते हैं या लाइट बॉक्सेस कहते हैं, तो कई लोग उनका भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए होते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर वो होता है, हम देखते हैं कि जब यहाँ लंबी सर्दियों का टाइम आता है, कई कई दिन तक सूरज नहीं निकलता है, सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 2-3 बजे तक ही थोड़ी सी लाइट होती है, बाकी टाइम अंधेरा रहता है, तो उसमें भी कुछ लोग इन लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स होती हैं, जिससे थोड़ा सा होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कमर्शियली काफ़ी अवेलेबल हैं। कैलकुलेटर्स होते हैं, आप आपके ऐप्स में, आपके फ़ोन पर ऐप्स आते हैं जिसमें एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है, आप ये ऐप्स भी डाउनलोड करके उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स उनके वही हैं, उनमें और डिटेल्स होती हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी चाहिए कि नहीं, अगर हम फ्लाइट पर जा रहे हैं वहाँ जाकर नींद नहीं आएगी, या प्लेन पर नींद नहीं आएगी, लंबा सफ़र है, तो रीजनेबल सुनने में लगता है कि हाँ वहाँ जाकर नींद नहीं आएगी तो हम नींद की गोलियाँ खा लें, लेकिन होता कई बार इसका उल्टा है। नींद की गोलियों से एक तो डॉक्टर आपको देंगे नहीं प्रिस्क्रिप्शन पर, ये लाइसेंस नहीं है उसके लिए, और आपको नहीं लेनी चाहिए, उससे आपका, आपको वो सिडेट करती हैं, आपकी जो रिदम है, बॉडी की जो क्लॉक है, उसको तो वो चेंज नहीं कर सकती हैं, तो उससे कई बार ज़्यादा नींद आए ना आए, इरिटेशन और ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगती हैं। मेलाटोनिन का कुछ बड़ा फैशन सा था एक समय पर, लोग कहते थे मेलाटोनिन की टैबलेट्स ले लें उससे फ़ायदा होगा, वो भी लाइसेंस नहीं है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे उनको, और उसमें कहा जाता है कि वो उतना अच्छा इफेक्ट उसका नहीं होता है। तो ये अमर जी थोड़ी सी जानकारी जेट लैग के बारे में थी। मेन चीज़ ये है कि आपको इसकी जानकारी रहे, आपको अवेयरनेस रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, और उसको आप थोड़ा सा, थोड़ी सी उसके लिए जो प्रिपरेशन है 3-4-5 दिन पहले वो कर सकते हैं, और फिर वहाँ जाएं तो वहाँ के दिन को दिन की तरह ट्रीट करें और शाम को जल्दी सोने की कोशिश करें, तो जल्दी उसका इफेक्ट हो जाता है।
एक सवाल यहाँ पर इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ चलें, अगर प्लेन में नींद आती है तो सो जाना चाहिए या नहीं सोना चाहिए?
सो जाना चाहिए,
अगर नींद आए तो सो जाना चाहिए। चलें ठीक है, क्योंकि फ्लाइट लैंडिंग से 10-15 मिनट पहले जागे रहना वो जरूरी है।
जरूरी तो नहीं है, वो उठा देते हैं आपको, क्योंकि आपको सीट सीधी करनी है, सीट बेल्ट लगानी है, लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो ऐसा
उतरते हुए लैंड करते हुए नजारा देखा जाए।
जी
जी, चलें, थैंक यू सो मच। और अब हम बाकी की बातचीत जो है अपनी ब्रेक और गोल्डन सॉन्ग के बाद जारी रखेंगे। अगर आपके पास हे फीवर से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो भेज सकते हैं 07564984152। जेटलैग से जुड़ा भी अगर कोई प्रश्न है वो भी भेज सकते हैं, हालांकि हमने आंसर तो कर लिए हैं, जेटलैग का जो है मुझे लगता है मोर ऑर लेस अब यहाँ तक पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब मैं लौट कर आऊंगी गोल्डन सॉन्ग के बाद, बराए मेहरबानी आसपास ही रहिएगा। थैंक यू। जो हर हफ्ते अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए। इसके अलावा सेहत संबंधी बातें होती हैं, बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं डॉक्टर साहब। तो कोई भी प्रश्न हो तो वक्त रहते पहुंचा दें तो हम भी वो प्रश्न उन तक पहुंचा सकते हैं। हे फीवर के बारे में बातचीत शुरू करेंगे, क्या है, क्यों है, किसको होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका क्या समाधान है, नेजल स्प्रेज या फिर टैबलेट्स या कैप्सूल्स क्या ज्यादा इफेक्टिव है, और ड्राउजी नॉन ड्राउजी दोनों तरह की टैबलेट्स भी मिलती हैं इसके लिए। इसके अलावा प्रश्न जो है, एक प्रश्न ये है कि इन भाई साहब को 15 साल से हे फीवर हो रहा है और खास तौर पर जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है, 4-5 हफ्ते तक चलता है। तो इनका मेन क्वेश्चन ये है कि विल इट एवर एंड और इज इट लाइफ टाइम, और अगला सवाल भी इससे मिलता जुलता ही है, तो क्या कहेंगे, कहाँ से शुरू करें?
जी तो पहले तो ये कि ये कहना कि ये ठीक होगा कि नहीं बड़ा मुश्किल है। फ्लक्चुएटिंग डिजीज होती है, कई बार आप देखेंगे किसी साल बहुत ज्यादा होती है, किसी साल कम होती है। लॉन्ग टर्म डिजीज है, अगर आपको है तो है, आपके अंदर टेंडेंसी है, कई बार बॉडी खुद थोड़ा सा उसको रिकवर कर लेती है, लेकिन उसमें कोई पक्का नहीं है। तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म तक चले, हर साल हो सकता है कि ये थोड़ी शांत हो जाए, कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। तो इसके इलाज हैं, तो अभी हम थोड़ा सा पहले बीमारी के बारे में बात कर लें, फिर इलाज की तरफ आएंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली उन बीमारियों में है जिनका आप क्योर नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें एकदम से ठीक करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो हे फीवर क्या होता है? हे फीवर माने ये पोलन से एलर्जी है, एक तरह की एलर्जी है ये। तो पोलन गर्मियों के समय में जब ये सर्दियां ख़त्म होती हैं और सब पेड़ पौधे अच्छे से उगने शुरू होते हैं, तो उनके जो फाइन पाउडर एक होता है जो जिसमें उनके छोटे छोटे बीज होते हैं जो स्प्रेड करते हैं ताकि पेड़ पौधे और फलें फूलें और दूसरी जगह पर जाकर उनकी बढ़े, तो उसके लिए पोलन्स निकलते हैं, प्लांट से निकलते हैं, ट्री से, पौधों से, घास से, फूलों से, दूसरे प्लांट्स में जाने के लिए ताकि उनकी जो है संख्या बढ़ सके। तो जो हे फीवर है वो स्ट्रिक्टली अगर बिल्कुल डेफिनेशन की बात करें तो घास या जो ये हे होती है, भूसा जो होता है, उसका जो पोलन्स होते हैं उसी को हे फीवर कहते हैं। ग्रास का जो पोलन होता है, ग्रास के जो बीज होते हैं घास के, वो आम तौर पर मई से जुलाई के बीच में होते हैं। तो इस लेट स्प्रिंग जब ये बसंत का मौसम शुरू होता है तो उसके लेट में और अर्ली समर तक। लेकिन हे फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम लोग बहुत, इस नाम को बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे पौधों के भी जो पोलन्स होते हैं, जैसे ट्री पोलन्स होते हैं, ट्री के जो बड़े पेड़ होते हैं उनके जो पोलन होते हैं वो आमतौर पर और जल्दी होते हैं, मार्च से लेकर मई तक, अर्ली टू लेट स्प्रिंग में। और उसके बाद ये जो वीड्स होती हैं जो उगाती हैं अपने आप, नेटल्स, डॉक्स वगैरह, उनके अर्ली स्प्रिंग से लेकर अर्ली ऑटम तक, तो सितंबर अक्टूबर तक भी इनके पोलन्स चलते रहते हैं। तो अलग अलग टाइम होता है, तो ये आमतौर पर मार्च से लेके अक्टूबर तक चल सकता है, लेकिन ये चूंकि अलग अलग पोलन्स होते हैं तो कुछ लोग को कई डिफरेंट अलग अलग तरीके पोलन से एलर्जी होती है, तो उनके सिम्टम्स काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। कुछ को एक खास किस्म के पोलन से एलर्जी होती है, तो जैसा अभी जिनका क्वेश्चन आया था, तो उनको जून के आसपास होती है, तो उनको जो है वो ट्री वाली, सॉरी, ग्रास के पोलन से उनको होती होगी, तो उनको बाकी से तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें देर तक भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और फिर वो कितनी तरह की एलर्जी है, एक से ज़्यादा भी एलर्जी हो सकती है, तो आपका टाइम ज़्यादा हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर यह बात बता देना ज़रूरी है कि इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो इस एलर्जी का कोई टेस्ट कराना बहुत रेयर उसकी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आम तौर पर जो उसका ट्रीटमेंट है वो सेम है, चाहे वो आपकी मई जून वाली एलर्जी हो, चाहे जुलाई अगस्त वाली हो, चाहे अक्टूबर नवंबर वाली, सितंबर अक्टूबर वाली हो, ट्रीटमेंट वही है। तो उसमें कोई ब्लड टेस्ट या और कोई टेस्ट करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उससे, तो हम लोग आमतौर पर वो टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी को वो जो पोलन है, जो बारीक सा उसका बीज है, उससे एलर्जी है। तो जब वो आपकी आंखों पर या आपकी नाक के अंदर सांस के साथ जो है वो पोलन जाता है, तो उससे कुछ केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, हिस्टामिन मेन होता है उनमें से, और हिस्टामिन की वजह से फिर जो नाक में चुभन होती है, इरिटेशन होता है, राइनाइटिस जैसे हम कहते हैं, पानी ज़्यादा बहता है, छींकें आती हैं, या अगर आँख में हुआ तो आँखों में खुजली होती है, आँखें लाल हो सकती हैं, उनसे पानी ज़्यादा आता है, कुछ लोगों में जब बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो फिर उनके वो साइनस में प्रॉब्लम होने लगती है, नाक कभी ब्लॉक है कभी बह रहा है, और फिर गले में भी होने लगता है, खांसी भी आ सकती है उससे। तो इसको जो है हे फीवर को हम लोग सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस माने कि नाक के अंदर आपकी नॉस्ट्रल्स में नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन सी हो गई है, और इसे हम एलर्जी है, एलर्जी की वजह से ये राइनाइटिस है, और सीजनल इसलिए कहते हैं कि वो उसी सीजन में हर साल होती है, तो इसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। ये बहुत कॉमन है, हे फीवर कहें या इसको सीजनल राइनाइटिस कहें, ये तकरीबन यूके में 20% लोगों को होता है, तो 100 में से 20 लोगों को, 10 में से 2 लोगों को ये जो है अक्सर होगा। जिनको शुरू होता है उनको वो बचपन से ही या टीनेज ईयर्स से ही शुरू हो जाता है आमतौर पर, और वो सेम टाइम पर साल में लगभग उसी समय पर जो है होता है। कई बार होता है कि ये ठीक हो जाता है, कई बार ये चला भी जाता है बहुत लोगों में, तो जैसा मैंने कहा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कई लोगों में ये कुछ साल तक चलता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं कि किसको ठीक होगा और किसको नहीं होगा, ना ही उसका कोई टेस्ट है। ये फैमिलीज में रन करता है, तो एक फैमिली में कई लोग होते हैं जिनको ये हे फीवर हो सकता है, और अगर आपको एक्जिमा है, डर्माटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम है, या अस्थमा है, तो आपको हे फीवर होने का चांस ज़्यादा होता है, या अगर आपको हे फीवर है तो आपको अस्थमा और एक्जिमा होने का चांस ज़्यादा, ये तीनों बीमारियां थोड़ा सा साथ साथ चलती हैं, और बहुत से लोग होंगे जिन्हें एक्जिमा भी होगा, अस्थमा भी होगा, हे फीवर भी होगा, तो ये एक साथ चलते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कि एटॉपिक कंडीशंस कहते हैं इसका, या एटोपी होती है, ये भी फैमिलीज में रन करता है, तो कई फैमिलीज में लोग होंगे जिनको इनमें से एक या दो या तीनों तकलीफें होंगी। तो सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये वेरी करते हैं, पर इसके सेम लक्षण नहीं होते हैं, तो मुझे हो सकता है कोई कुछ लक्षण हो किसी दूसरे व्यक्ति को, उसी बीमारी की वजह से दूसरे लक्षण हो, दूसरे सिम्टम्स हो, कुछ लोगों को बहुत हल्का होता है, कुछ लोगों को काफ़ी सीवियर होता है, कुछ लोगों को लगातार चलता है कि अब वो मई के महीने में शुरू हो गया तो उन्हें पता है कि वो जून के एंड जुलाई तक चलने ही वाला है, ख़त्म नहीं होगा, कुछ लोगों को आता जाता है, एक दो चार दिन होगा फिर ठीक हो जाएगा, कुछ को नहीं होगा, इस तरह से भी, तो इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, हर किसी का अलग अलग होता है। जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो आम तौर पर सब लोगों को होते हैं, वो रनी नोज, तो आपकी नाक या तो बहेगी या ब्लॉक रहेगी, तो रनी नोज और ब्लॉक नोज या दोनों ही होते हैं, कभी ब्लॉक हो गई फिर वो बहने लगी फिर ब्लॉक हो गई, इच्ची होती है नाक के अंदर, लगता है जैसे खुजली सी हो रही है, इरिटेशन होता है, छींकें आती हैं, आँखों में भी खुजली आएगी, आपको आँखों को खुजलाने का मन करेगा और पानी बहेगा उनसे, लाल हो सकती हैं, गले के अंदर इचीनेस लग सकती है, तो आपको गले में उसकी जो है सोर थ्रोट सा होता है, बल्कि इरिटेशन होता है जैसे अंदर से खुजली हो रही हो। लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो आमतौर पर लोगों को नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को होते हैं, कि आपको स्मेल चली जाती है उस ड्यूरेशन में, आपको स्मेल नहीं कोई आएगी किसी चेहरे की, चेहरे पर आपके अगर साइनसिस में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तो चेहरे पर साइनस के पास, नाक के आसपास दर्द होने लगता है, पसीने आते हैं, हेडेक होने लगता है, तबीयत खराब सी होने लगती है, आपको लगेगा कि जैसे काफ़ी तबीयत खराब हो रही है
जी।
अस्थमा के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो कई लोगों को जिनको अस्थमा होता है उनका अस्थमा हे फीवर के सीजन में काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो उन्हें खास तौर पर प्रिकॉशन रखनी होती है इसके लिए। कुछ लोगों के अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं, वीजिंग है, सांस फूलना है, वो सिर्फ हे फीवर सीजन में ही होते हैं, बाकी साल में नहीं होते हैं, तो ये भी होता है, और कुछ लोगों में ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा खराब, इस हद तक कि वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, बच्चे हैं तो स्कूल नहीं जा सकते हैं, काम पर नहीं जा सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, उन्हें सिर्फ कमरा बंद करके अंदर बैठना पड़ता है कि ये सिम्टम्स ना हो, तो कुछ लोगों में काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। इसका डायग्नोसिस क्या है, तो और ट्रीटमेंट की बात तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज कर पाएंगे
अंबर जी, अगले हफ्ते ही मिला के 6 मिनट बचे हैं।
तो डायग्नोसिस के लिए इसका कोई ऐसा खास टेस्ट नहीं होता है और ना ही आपको डॉक्टर को इसको अगर हल्के सिम्टम्स हैं तो दिखाने की कोई ज़रूरत भी है। इस साल से कुछ लोगों को पता होगा, उन्होंने ऑलरेडी उनके साथ ये हुआ होगा कि इस साल से गवर्नमेंट ने NHS ने जो हे फीवर के ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत सारी अलग बीमारियों के साथ साथ इनके ऊपर भी GPs को कहा है कि इनका प्रिस्क्रिप्शन ना दें। तो ये काफ़ी लोग इससे थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि वो कई सालों से इसके प्रिस्क्रिप्शन हर साल लेते आ रहे हैं और अब वो प्रिस्क्रिप्शन बंद हो रहे हैं तो उनमें थोड़ा गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, जो कि जायज़ है। लेकिन प्लीज़ उसके लिए आपको अपने GP से या रिसेप्शनिस्ट से गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं किया है, पूरे कंट्री में, पूरे देश में एक साथ ही हो रहा है। NHS ने ना सिर्फ हे फीवर की बल्कि बहुत सी दवाइयाँ जो हैं, कई तरह की क्रीम्स, शैम्पूज, डेंड्रफ की दवाएँ, शैम्पू, स्केबीज़ अगर आपको है उसकी दवाइयाँ, माइल्ड मॉइस्चराइज़र अगर आपको हल्के ड्राई स्किन या हल्का एक्जिमा है तो उसमें जो क्रीम्स वगैरह मिलती हैं लगाने के लिए, और अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप क्रीम लेते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं और हे फीवर की दवाइयाँ उनमें शामिल हैं। ये दवाइयाँ आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप केमिस्ट के पास जाएंगे तो केमिस्ट आपको दे सकता है। तो अधिकतर वो दवाइयाँ जो केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकता है उसके ऊपर NHS में अब कहा जा रहा है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन ना दिया जाए, वो आप केमिस्ट से खुद ही पैसे लेकर लें। तो जो लोग पेमेंट करते थे अपने प्रिस्क्रिप्शन की उनको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं फ्री मिलती हैं, बच्चों को, 60 साल से ऊपर के लोगों को, या जो लो इनकम या अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको, तो उनको जाहिर है कि अब पैसे देने पड़ेंगे इसके, तो उनको लगता है कि क्यों हो रहा है। लेकिन उसमें जैसा मैंने बताया ये NHS की पॉलिसी है, ये आपके GP ने ऐसा नहीं किया है, तो आपको उसमें उन GP से कोई नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हे फीवर के हम बात कर रहे थे, तो इसके डायग्नोसिस के लिए अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में आपका नाक बंद रहता है, नाक के अंदर खुजली सी होती है, पानी आता है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है, आँखों में तकलीफ होती है, आपको लगता है कि हे फीवर है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको देखकर, आपको चेक करके अगर कहेंगे कि हे फीवर है तो अब चांसेस है कि आपको वो प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं ही देंगे, आपसे कहेंगे आपको हे फीवर है, आप जाइए और केमिस्ट से अपनी दवाएँ लें। तो आप डायरेक्ट केमिस्ट को दिखाकर भी ये दवाइयाँ ले सकते हैं, और केमिस्ट को लगता है कि नहीं कुछ और है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब वो आपको GP को दिखाने को कह सकते हैं। तो इसका कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता है हे फीवर का, ये सिर्फ हिस्ट्री से ही, बातचीत से ही पता लगता है कि क्या है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है कि कुछ और प्रॉब्लम है तब यस आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और बहुत रेयर कभी ज़रूरत होती है तो हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें कोई टेस्ट नहीं कराए जाते हैं।
ओके, और मैं देख रही हूँ कि अब लोग टाइप कर रहे हैं, सवाल भेज रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अब आपके सवाल शामिल नहीं किए जाएंगे बिकॉज द प्रोग्राम इज अबाउट टू फिनिश नाउ, और आप लोगों के पास प्लेंटी टाइम होता है, 11 बजे से ही आप भेजना शुरू कर सकते हैं। सो लास्ट मोमेंट मैसेजेस आज नहीं हो पाएंगे, सो यू विल हैव टू रीसेंड योर क्वेश्चंस
नेक्स्ट वीक, दे दें क्वेश्चन भेज दें, या मैं अभी जो आए हैं तो अगर संभव होगा तो पढ़ लेता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब अगले हफ्ते दे दूं।
अभी अगर आपके पास वक्त हो तो जवाब तो फिर भी नेक्स्ट वीक ही मिलेगा, सो आई गेस बेटर होगा कि अगले हफ्ते टाइम फिर भेजें और 11 बजे भेजें ताकि आप उनको पढ़ सकें, नॉट व्हेन यू आर अबाउट टू लीव। एंड जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे अगले हफ्ते, आप तब अपने प्रश्नों को रीसेंड कर दीजिएगा जिनके सवाल आज शामिल नहीं हो पाए हैं, या फिर आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं health@sabrasradio.com, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, बिफोर द प्रोग्राम, नॉट ड्यूरिंग, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोग्राम डॉक्टर साहब ईमेल्स नहीं देख सकते। जी, तो अब एक आखिरी मिनट में हम क्या कहेंगे?
जी, तो अंबर जी, यही है फीवर के बारे में कि ये तकलीफ काफ़ी है, आजकल काफ़ी चल रही है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट की गोलियां होती हैं, नाक के स्प्रे होते हैं, आंखों की दवा ड्रॉप्स होती हैं, तो ये आप डायरेक्ट केमिस्ट से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में और डिटेल में जानकारी, हम किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, दवाओं के बारे में और जानकारी, तो ये सब हम लोग अगले हफ्ते फिर से डिस्कस करेंगे।
चलिए ठीक है, और अब जो हमारे पास आखिरी कुछ सेकंड्स हैं, इनमें कुछ कहा जा सकता है?
जी यही कि ये प्रोग्राम जो है अंबर जी, हमारा आप सुनते हैं रेडियो पर या ऑनलाइन भी, और फिर आप सबरस रेडियो की वेबसाइट पर www.sabrasradio.com पर जाकर वहाँ पर लिसन अगेन ऑप्शन होता है, तो आप अगले चार हफ्ते तक इस प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हैं। तो आप मिड मॉर्निंग शो अंबर जी के प्रोग्राम में जाएं सोमवार वाले में, और उसमें बीच का जो घंटा होता है 11 से 12 बजे सेकेंड हाफ सेकेंड वन थर्ड जो प्रोग्राम है, उसमें आप ये फिर से सुन सकते हैं। आप इसको MP3 फाइल्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं या आगे किसी को भी भेज सकते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस को देखते हुए कि आप अगर अपने सवाल का जवाब चाहते हैं इसी एपिसोड में जो चल रहा है, तो बराए मेहरबानी अपने सवालों को या तो 11 बजे से पहले पहले भेज दें, क्योंकि टॉपिक आपको पहले से पता होता है। हम बता देते हैं कि अगले हफ्ते ये टॉपिक होगा, प्रोमोस भी चलते रहते हैं, सो आपको बताया जाता है। और जब मैं भी आती हूँ, कार्यक्रम शुरू होता है, तो भी मैं याद दिलाती हूँ कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं, कोई प्रश्न हो तो बराए मेहरबानी आप अभी फ़ोन करके 11 बजे से पहले फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या अगर लंबा सवाल है 07564984152 इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। इवन बेटर, आप पहले से डॉक्टर साहब को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं health@sabrasradio.com, और जब डॉक्टर साहब आएंगे स्टूडियोज में तो आते आते अपने साथ आपके प्रश्नों को भी ले आएंगे, वक्त रहते जवाब मिल जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट मैसेजेस जब आप भेजते हैं आफ्टर 11:40, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सवाल जो हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि पहले से आए सवालों का जवाब देने में ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। सो अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर साहब फॉर ऑल हिज वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द एडवाइस एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब,
आप हमारे
आते हैं और इतनी सारी जानकारी देते हैं, इतनी मदद हो जाती है बहुत से लोगों की। तो आपको दिल से दुआएं भी देते हैं हमारे कई श्रोता, और हम भी आपको दिल से थैंक यू कहते हैं।
थैंक यू,
और अब मिलेंगे अगले हफ्ते।
जी,
हे फीवर कंटिन्यूज नेक्स्ट वीक, सो प्लीज कीप योर क्वेश्चंस कमिंग health@sabrasradio.com, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। और अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी न्यूज के बाद, डॉक्टर साहब से मिलेंगे अगले हफ्ते।